देखो ये सत्संग है, ये उपनिषदों में ऐसी बातें नहीं आती, उपनिषदों में नहीं आती, बड़े बड़े शास्त्रों में नहीं आती, कैसे क्रमबद्ध में बात बताई है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक छोटी सी कोई सेठ जी मामू की पुस्तक पढ़ते हैं, परंतु ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत अच्छा भाव बनता है इससे। राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायां आदाय तेनैव ददाहलंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्रवणामृत जयी कथा सुहाई। शोक निमग्न सीता जी, भय में डूबी हुई सीता जी, त्रिजटा से आग में जलाने की प्रार्थना कर रही है, ऐसी सीता जी हनुमान जी के द्वारा जब राम जी का गुणगान सुन रही है तो उनके मन में बड़ी शांति आई। श्रवणामृत जयी कथा सुनाई, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सबसे बड़ी बात है, सुनते ही सीता जी का सारा दुख भग गया। दुख देखो, दुख के अंदर मर भी मरने जा रही थी, भयभीत हो रही थी और वियोग में तड़फ रही थी, शोकाविष्ट थी, अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, सारा दुख मिट गया और कहने लगी कि भाई इतनी सुंदर बात बताने वाला कौन है, पास में तो आओ भाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई, जो ऐसी सुंदर कथा कह रहा है हे भाई वो प्रकट तो हो, कौन हो, कौन किधर से बोल रहा है। तब हनुमान जी महाराज टहनी में से इधर उधर से उतरते 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 नीचे आ गए। तब हनुमंत निकट चली गयौ फिर बैठी मन विस्मय भयौ। हनुमान जी महाराज पास में गए और प्रणाम किया, जैसे बच्चा माँ को प्रणाम करता है वैसे सिर टेक प्रणाम किया, तो सीता जी के मन में आश्चर्य हुआ कौन है ये, कोई माया तो नहीं है कि कोई कौन है क्या है। इतनी घबराई सीता जी, इस रावण का कुछ पता नहीं है, साधु बन के आया अब क्या पता बंदर बन के आया हो, ये कौन है क्या है, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हनुमान जी महाराज समझ गए वाल्मीकि रामायण में दूसरी जगह आता है, सीता जी बहुत यूं डर गई, अरे मैं तो मरूंगी, ये रावण आ गया, ये चिल्लाने लगे। हनुमान जी ने चिल्लाओ मत माता जी, चिल्लाओ मत, आप मेरी से बात सुनो, तुम कहां से आए हो? मैं राम जी के यहां से। राम जी के यहां तो उनका स्वरूप का वर्णन करो, बताओ। तो हनुमान जी वहां तो स्वरूप का वर्णन करते हैं, ऐसे राम जी के नेत्र हैं। देखो नेत्र भी बताते बताते हनुमान जी ये नेत्रों के ऊपर, ये पलकों के ऊपर जो बाल है ना, इन बाड़ों की गोलाई भी बताते हैं कि ये बाल ऐसे ऐसे है, एक एक बाल अलग अलग है, ये यहां के बाल, ये इतनी गहराई से मैंने राम जी के दर्शन किए, और ऐसे ऐसे उनके घुंघरालू घुंघरालू केस हैं। हनुमान जी ने और जगह ये कान कितना बड़ा है ये बताया है, ये कान कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, वहां बताया ये कान है ना, ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं होते हैं, किसी के भी नहीं होते कान, बिल्कुल बराबर नहीं होते, ये हाथ बराबर नहीं होते हैं, फर्क होता है, पैर बराबर नहीं होते, फर्क होता है, ऐसे अंगों का वर्णन किया तो वहां सीता जी को विश्वास हो गया कि ऐसा राम जी का स्वरूप माया से बता नहीं सकता, इतना जैसा है वैसा बताया है। लेकिन तुलसीदास जी के सीता जी है वो इतनी देर बिचारी तड़प नहीं सकती है, अतएव हनुमान जी ने एक ही चौपाई में बहम दूर कर दिया। राम दूत में माँ तू जानकी, हे माँ जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ, सत्य सत्य बात कहता हूँ, और सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की सौगंध खाके कहता हूँ। ये करुणा निधान शब्द जो आया ना, ये सीता जी समझ गए कि राम जी के यहां से आया है, राम जी ने इसको एक कोड वर्ड दिया है। अनजान आदमी कोई हो तो भाई उसको तो कह दिया वो आदमी आएगा तो ऐसे शब्द बोले तो तुम समझ लेना कि मेरा आदमी है। तो हनुमान जी महाराज को राम जी ने कहा था कि तू करुणा निधान बोलना, राम नाम मत बोलना पहले ही पहले। क्यों? क्योंकि राम राम तो मेरा सभी नाम लेते हैं, सीता मेरा नाम राम नहीं लेती, करुणा निधान नाम लेती है। मन जाहि राचहु मिली सोवर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान। ये पार्वती जी ने करुणा निधान शब्द सीता जी को सुनाया। तो सीता जी अकेली में रहती थी तो राम जी को करुणा निधान ही बोला करती थी, हे करुणा निधान ऐसा कीजिए, हे करुणा निधान ऐसा कीजिए। लक्ष्मण जी के सामने भी करुणा निधान नहीं बोलते थे, अकेले में करुणा निधान बोलते थे। सीता जी को विश्वास हो गया कि अब ये आए। राम मातु में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, ये मुद्रिका मैं लाया हूं। और दीन राम मोय, दीन राम तुम कह सहिदानी, एक सैनानी दिए, सैनानी निशानी दिए ये। तो राम तो मनुष्य है, तुम बंदर हो, ये मनुष्यों का और बंदरों का क्या मिलन होता है, कैसे मिलन हुआ? एक नर हो एक वानर हो, तो ये वानरों का और नरों का कैसे क्या मेल हुआ? तुम किसी और राम की तो बात नहीं महाराज, उसी राम की चर्चा कर रहे हैं। तो भाई कैसे मिलना हुआ? तब हनुमान जी ने सब कथा सुनाई। कथा सुनने पर उनके मन में विश्वास हो गया ये राम जी का दास है। बताया ना अभी, सब अंगों का वर्णन सुनाया उनके। देखो भगवान की दंतावली तक बताई उन्होंने, दांत कैसे उनके, दंतावली बताई। चरण चरण है, चरणों की जो ये अंगुलियां आ रही है ये इनका रूप, इनके नख बताए, नख में से कैसी कांति निकलती है, चरण के नीचे ये यहाँ की रेखाएं चरणों के नीचे की वो रेखाएं तक बताई। तो कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। अब जो है सीता जी के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। जो सीता जी अत्यंत दुख में शोक में भय में डूबी हुई थी उन सीता जी के आंखों से प्रेम से आंसू आने लगे। सीता जी कहने लगी बेटा हनुमान मैं तो विरह के सागर में डूबने वाली थी, क्या तुमने डूबती हुई को एकदम मुझे जहाज के समान आकर मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं, मेरी दशा तो मैं मेरी भोग रही हूं, मुझे प्राणनाथ की दशा का वर्णन सुनाओ, उनका कुशल क्षेम सुनाओ। वे अपने छोटे भाई के साथ में आनंद पूर्वक है ना, भगवान कृपा सिंधु हैं, कोमल चित वाले हैं, लेकिन यहां आज तो उनको थोड़ी कठोरता धारण करनी पड़ेगी ना वानर, क्योंकि कठोरता धारण किए बिना मैं इस दुख से नहीं छूट सकती। भगवान सबको सुख देने वाले हैं, पर वे कभी कभी मेरी भी याद करते हैं क्या? और कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मैं अपने नेत्रों से श्याम सुंदर मेरे प्राणनाथ को देख करके हृदय में शांति का अनुभव करूंगी? ऐसा बोलते बोलते सीता जी रो पड़ती है, मुख से कुछ वचन नहीं आता है, और इतना ही कहा कि हनुमान तुम इतना ही समझ लो मैं बहुत दुखी हूं। जब उनका नाम कृपा सागर है, कृपालु है, दया सागर है, तो आज तो उनको मेरे समान कोई दया का पात्र मिलेगा भी नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। सीता जी का दुख सुनकर के हनुमान जी महाराज बड़े विनय भाव से स्वयं भी गदगद होकर के कहने लगे हे माता आनंद सागर कृपा सिंधु भगवान श्री राम के लिए आपने कुशल पूछा है, उनके सब प्रकार से आनंद है, पर वो आप ही के दुख से दुखी है। आप ऐसा मत मानिए कि राम जी को कोई दुख नहीं हो रहा होगा। आप अपने मन को छोटा मत कीजिए, तुमते प्रेम राम के दूना। देखो ये मामूली बात नहीं बोल रहे हैं हनुमान जी महाराज, तुम्हारे से ज्यादा प्रेम है। उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण से पूछने लगे कि कृष्ण सच्ची सच्ची बात बताओ, आप में ज्यादा प्रेम है कि गोपियों में ज्यादा प्रेम है? तुम्हारे पास था तो ऐसा लगता था कि आप बहुत प्रेम करते हो, गोपियों के पास गया तो ऐसा लगता कि आप बड़े निष्ठुर हो, गोपियां बड़ी प्रेम करती। मैं तो आप दोनों के सामने कुछ कह नहीं सका कि किसमें प्रेम ज्यादा है, कि तुमने गोपियों से पूछा क्या? हाँ गोपियों से पूछा था, गोपियों ने कहा कि हमने तो केवल कृष्ण को जाना है, हम प्रेम रेम जानते ही नहीं है, किसमें ज्यादा किसमें कम ये हमको मौका, हम तो एक कृष्ण के प्रेम में ही डूबी रहती है, अब किसमें ज्यादा किसमें कम हमने इधर समय नहीं लगाया। तो मैंने देखा कि उनमें ज्यादा प्रेम है, और जब मैं तुम्हारे पास बैठता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम में बहुत प्रेम है, किसमें प्रेम है पता नहीं। तो भगवान कहने लगे कि भाई देखो गोपियों में ज्यादा, ऐसा मान लो कि ये तो दुनिया को मानना चाहिए कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे दुनिया को भगवान का प्रेम मिलता है, तो वो मान सकते हैं। लिया मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपका खास खास हृदय का मित्र सुहृद। तो भगवान ने कहा कि मेरे में प्रेम ज्यादा है। जन जननी मानहु जियउ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। राम जी में प्रेम ज्यादा है माता जी, आपसे दुगना प्रेम है। तब जो है राम जी के पूरे संदेश सुनाए, वो सुन करके सीता जी एकदम ध्यानस्थ हो गई। और हनुमान जी महाराज खुद रोने लग गए। अब गदगद वाणी में कहने लगे कि सुनो सुनो, राम का संदेश तो सुनो। राम जी ने ये कहा कि हे सीते, तुम्हारे बिना इस संसार में सब मेरे से विपरीत हो गए। जिन वृक्षों की हरियाली में तुम्हारे साथ बैठकर मार्ग के श्रम को दूर करता था, आज उन्हीं वृक्षों के पत्ते मुझे आग के समान जला रहे हैं। चंद्रमा को देख देख कर ठंडी रात्रियों में मैं कितना आनंद में चंद्रमा के दर्शन करता था, वो चंद्रमा का चंद्रमा की चांदनी मुझे आग की लपट दिखती है। काल निशासम निशिशसि भानु, दिन में जब सूर्य दिखता है वो भी मुझे काल रात्रि के समान दिखता है। अरे फूलों से तुम कितना प्रेम करती थी, फूल तोड़ तोड़ के लाती थी और माला बनाती थी, मुझे माला पहनाती थी, तुम भी अपनी चोटियों में माला यूं गूंथती थी। तो कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, जितने ये कमल के बगीचे हैं, जंगल है, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई कुंत हो। कुंत माने भाले, ये भाले जैसे मेरे हृदय में चुभते हैं। और आकाश से जो जल बरसता है सबको शीतलता प्रदान करने वाला, वो ऐसा लगता है जैसे कोई तपा हुआ तेल बरस रहा हो। और जिसको मैं अच्छा मानता था उन्हीं को देख देख कर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। ये हवा चलती है त्रिविध हवा, शीतल मंद सुगंध जो हवा चलती है वो मुझे सर्प के श्वास के समान दुखी देने वाली होती है। और तो और सीते, मेरा अपना दुख है, मैं किसको कहूं। किसी को ये दुख कहा जाए तो दुख कम हो जाया करता है, पर किसको कहूं मैं। ये दुख एक ऐसा है कि मेरे दुख को सुनने वाला कोई है ही नहीं। देखो भगवान का दुख एक अलग, एक माँ होती है, माँ हमारे शरीर का पालन करने वाली होती है, और हमारे कोई बीमारी लग जाए तो माँ की रोटी छूट जाती है। माँ के मन में चिंता होती है, माँ थोड़े दिनों में पतली हो जाती है, दुबली हो जाती है, पीली पड़ जाती है, दुखी रहती है। अरे माँ क्या बात है, आप इतने शरीर से कमजोर क्यों हो गई। तो माँ कहेगी कि बेटा मेरा तेरा छोटा भाई है, वो बीमार बहुत रहता है, दुखी रहती हूँ। ऐसी ऐसी माताओं के दर्शन हुए हैं, वो रोती हैं बुरी तरह से। क्यों क्यों रोती हैं, उनमें प्रेम ज्यादा है। राम जी महाराज है, वो जीवों के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। जो भगवान में प्रेम करने वाले होते हैं, उन भगवान के भक्तों के विरह में भगवान को जो कष्ट होता है, दुख होता है, वो कुछ और ही ढंग का होता है। इसलिए कहे कि मेरा दुख मैं किसको कहूं, काई कहूं ये जानन कोई, मेरी पीड़ा कोई जान नहीं सकता है। क्योंकि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तुम्हारा और हमारा तात्विक प्रेम है ये केवल एक मेरा मन ही जानता है। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा है, उनका रोना कैसे होता है ये कौन जान सकता है। बस इतना ही है कि मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है, इससे ज्यादा प्रेम की मेरे पास कोई परिभाषा नहीं है। सीता जी ने ये बात सुनी तो सीता जी सुनते सुनते प्रेम मग्न हो गई। देखो राम जी ने तो अपना दुख ही बताया भाई, सीता जी को तो दुखी होना चाहिए, अरे मेरे लिए इतने दुखी है, तो इसमें क्या है कि भगवान का प्रेम टपका, तो उस प्रेम से सीता जी की जो विरह अग्नि है उसको शांति मिली। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता जी आप धैर्य धारण करो, भगवान का स्मरण करो और आप ये कायरता छोड़ो। मैं आपको विश्वास पूर्वक बात कहता हूं, राम जी के बाण यहां आग के समान होंगे और ये जितने निशाचर हैं ये पतंगे के समान चिड़ 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 करते करते सब मर जाएंगे, पर थोड़ा समय लगेगा मां, क्योंकि अभी तक कृपा निधान भगवान को मालूम नहीं है कि आप यहां होने तो विलंब करते ही नहीं। राम जी के बाण तो सूर्य के समान है माता जी, और ये निशाचर है ये अंधकार के समान है, सूर्य के उदित होते ही अंधकार का पता नहीं चलता, ऐसे इनका पता ही नहीं चलेगा। देखो माता जी आप तो बहुत बुरी तरह से रो रही हो, मुझे तो आज्ञा नहीं मिली है, मैं अभी आपको उठा के ले जाऊं, अभी आपको मैं राम जी के पास ले जाऊं, लेकिन आज्ञा नहीं है, मैं इस प्रकार से आपको दुखी देख भी तो नहीं सकता हूं, थोड़े दिन की और बात है, ऐसी बंदरों की सेना आएगी और आकर के राम जी को तो शायद ही कुछ करना पड़ेगा, बंदरों की सेना ही तहस नहस कर देगी सब राक्षसों को, और नारद आदि आकर के खूब यहां यश गाएंगे, आपके सामने नारद आदि वीणा बजाकर आपकी स्तुति करेंगे। अरे बेटा तुम तो बहुत आगे की बात करते हो, ये बंदर आकर क्या करेंगे, ये बंदर तो तुम्हारे जैसे छोटे छोटे ही तो हैं, इन राक्षसों को मैं देखूं बड़े बलवान राक्षस हैं, लंबे लंबे शरीर वाले हैं, बड़ी बड़ी दांत, इनके दांत हैं, जबाड़े हैं, मुझे ऐसा आश्चर्य होता है कि तुम्हारे जैसे बंदरों को तो ये उठा उठा के खा जाएंगे, उल्टा इन राक्षसों को तुम्हारे आने से भोजन मिलेगा और भोजन मिलने से तो और हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तुम कैसे इन राक्षसों के साथ लड़ाई करने की बात कहते हो, मेरे तो बड़ा संदेह हो रहा है भैया, संदेह हो रहा है, तो संदेह को दूर करूं क्या होगा भैया, क्या करोगे तुम, ये देखो ये देखो ये देखो, सुनी कभी प्रगट कीन निज देहार कनक भूधराकार शरीरा, और कितना बड़ा शरीर किया हो कनक भूधर, सुमेरु पर्वत के समान विशाल शरीर, सीता जी तो यूं देखती रह गई हूं इतना विशाल शरीर देख करके सीता जी मुस्कुराने लगी, अरे हनुमान ऐसे ऐसे हो गया तुम, सभी लोग ऐसे हैं क्या कि माता जी मैं तो एक बहुत छोटा सा बंदर हूं, मैं बहुत छोटा सा हूं, लेकिन मेरे से कितनी कितनी शक्ति वाले बंदर हैं और कितनी संख्या में है। सीता मन भरोस तब भय हो, हनुमान जी महाराज वापिस अपने छोटे से रूप में आ गए। सीता जी मुझे बेटा ये क्या बात है, मैं क्या देख रही हूं, हे माता ये मैं कोई मेरा बल थोड़ी दिखा रहा हूं, तो ये भगवान का बल है, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल, ये सब भगवान का जो है ये बल है, हम तो बंदर हैं, हमारा काम तो टहनी पर से टहनी पर से उछलना कूदना, इसके अलावा हमारे पास कोई बल नहीं है, भगवान की कृपा हो जाती है तो छोटा सा ये सांप है वो गरुड़ को खा जाए, दिखने में तो गरुड़ खाता है सांप को, लेकिन भगवान की यदि शक्ति मिल जाए छोटे से सांप को गरुड़ को खा जाए, कि बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम बड़े श्रेष्ठ हो वानर बेटा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो। देखो यहां राम जी ने कभी बेटा नहीं कहा हनुमान जी को, बेटा सीता जी ने पहली बार यहां कहा, तो बाद में राम जी भी उनको बेटा बोलेंगे। अभी तक राम जी ने हनुमान जी को बेटा नहीं कहा, क्योंकि बेटा बेटे पर ज्यादा हक होता है, वो मां का होता है। मां ने यदि बेटा माना है तो वो बेटा है, पिता के मानने से बेटा नहीं होता। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बेटा मैं आशीर्वाद देती हूं, तुम अजर अमर बनोगे, गुणों की निधान बनोगे, तुमको भगवान कभी भी किसी भी प्रकार से छोड़ नहीं सकेंगे, उनकी कृपा बरसती रहेगी। एक बार क्या हुआ, बीच में बात याद आ गई, एक बार अयोध्या में सब भाइयों ने विचार किया कि राम जी के पास में तो हनुमान हरदम कर सारी सेवा करता है, सारी सेवा लेता है, सारी सेवा करता है, हमारी सेवा लेता है, हमारे सेवा को, हम लोगों को सेवा करने का मौका नहीं मिलता, खुद ही खुद सेवा करता है। तो सीता जी के पास आए भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, कहने लगे जी सुबह से लेकर के शाम तक ये हनुमान ही हनुमान सेवा करता है, हमको भी मौका मिलना चाहिए। सीता जी ने कहा कि देखो हनुमान बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है इस पर, वो तो सब ठीक है, पर हमको भी तो सेवा, उन्होंने बहुत सेवा कर ली, सेवा नहीं कर ली, राम जी इनको छोड़ना नहीं चाहते। कैसे नहीं छोड़, हम सब काम करेंगे तो क्यों नहीं छोड़ेंगे। सीता जी ने कहा देखो भाई आप सीधी बात कर लो, हनुमान सेवा न करे ये मेरे से तो कहा नहीं जाएगा, आपके कहे बिना तो पार भी नहीं पड़ेगी। तो सीता जी ने देखा कि चलो मैं बात करूंगी। राम जी और सीता जी दोनों बैठे हुए थे, तो सीता जी ने कहा कि महाराज आपके छोटे भाई आपकी सेवा करना चाहते हैं। वो कहते हैं हनुमान जी को तो बहुत समय हो गया सेवा करते करते, वनवास में भी बहुत सेवा की, यहां भी बहुत सेवा की, हम भी सेवा का लाभ लेना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा कि सीता जी तुम्हारा क्या विचार है। अब सीता जी ने कहा मैं मेरे पर नहीं उनकी बात आप तक पहुंचाई हूं, आपको क्या अच्छा लगता है। कि देखो ये हनुमान का कुछ और ही भाव है, तो क्या भरत जी का भाव कम, ना 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 इनमें कम ज्यादा की बात नहीं कहता हूं, लेकिन भरत से सेवा लेने में संकोच बहुत होता है, क्योंकि मैं और भरत ज्यादा पास में रह ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते, भरत को देखते ही मेरा हृदय एकदम आनंद में उमड़ता है, और भरत मुझे देखता है तो उसके भी यही आनंद का सागर उमड़ता है, हमारे सारे व्यवहार रुक जाएंगे। सीता जी तो रुक जाएंगे तो रुक जाएंगे, लेकिन वो सेवा के लिए बोलते हैं, अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा तो कर रख लो। लक्ष्मण ने तो मेरी सेवा की है, करता ही है, हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन महाराज जी वो हनुमान जी को अभी सब छुट्टी देना चाहते हैं, अच्छी बात। हनुमान जी को कौन कहेगा, सीता जी ने कहा मैं कह दूंगी, तो आप कह दो। सीता जी ने फिर हनुमान जी को अलग से बुलाया, कहा कि देख बेटा तूने तो बहुत सेवा की है, अब मेरे कहने से अभी इन भाइयों को राम जी जो है महाराज की सेवा में रहने दो, जो आपकी आज्ञा माता जी। हनुमान जी रोने लग गए, तो तेरे माँ एक बात है क्या, इतनी बात उनकी है और एक बात मेरी है कि बस मुझे अयोध्या से जाने का आप नहीं 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 ऐसा नहीं होगा बेटा, अयोध्या से नहीं जाने देंगे, अच्छी बात, और मैं आपके महल के प्राचीर पर बैठा रहूंगा, ऊपर जो घूमती है वहां पर बैठा रहूंगा, दीवारों पर बैठा रहूंगा। क्यों बेटा, बैठा रहूंगा कभी महाराज निकलेंगे, महल से निकलते हो, बाहर पधारते हो, छत पर जाते हो, उनके दर्शन करता रहूं। नहीं 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 इसमें कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है कि हम कोई तुमको देश निकाला दे रहे, बिल्कुल रहो, हमारे महल में ही रहो, खूब आनंद से रहो, केवल सेवा की कोई बात नहीं, बस बस बस। राम जी ने कहा ठीक है साहब। राम जी ने कहा क्यों, हनुमान ने क्या कहा? बस हनुमान तो कहता है मैं राम जी को निहारता रहूं, बस निहारता रहूं। अच्छी बात, भगवान को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अब क्या करें, सबने कहा है तो मान लिया। देखो बड़ा आदमी वो होता है कि जो सबकी बात मानता है। परिवार में रहने का ढंग ही यही है, तो हनुमान जी महाराज को जो है वही रहने की इजाजत दे दी, वह रहने लग गए। अब जो है सेवा का मौका मिला, सेवा करने लगे सब। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, चार, भगवान को भी हनुमान जी से मिलने की, सेवा लेने की बड़ी इच्छा हुई, पर अब करें क्या। राम जी महाराज तो खुद जो है वाणी के अंदर चुप हो गए। एक दिन भगवान ने कहा सब सेवा बांट ली इन्होंने, ये तो कपड़ा धोएंगे, ये भोजन कराएंगे, ये तांबूल देंगे, ये रुमाल देंगे, ये वो देंगे, सब सेवा बांट ली। ठीक है, हनुमान जी महाराज ने कहा यही उबासी, नहीं राम जी महाराज ने उबासी ली, उबासी लेने मुंह खुला ही रख लिया भगवान ने। उबासी का कायदा है कि जो उबासी आए तो उसके पास में चुटकी बजाए, या तो वो खुद चुटकी बजाए या पास वाला चुटकी बजाए। चुटकी क्यों बजाए? चुटकी बजाने से ध्यान चुटकी की तरफ जाता है। ये मुंह फाड़ते हैं ना, ज्यादा मुंह फाड़ के उबासी नहीं लेनी चाहिए, पर आता है वो वेग अदा, हाँ पूरा कर, या जबाड़ा कहीं खुल न जाए इसलिए चुटकी बजाई जाती है। आपको हम यदि हमको उबासी आए, आप चुटकी बजाओ, मेरा ध्यान उधर जाएगा, उधर जाते ही जबाड़ा पूरा खोलने का भाव नहीं बनेगा। या खुद बजाओ या दूसरा करे। राम जी ने खुद ने तो अपना कोई चुटकी बजाई नहीं, कि सेवा दूसरे कर रहे हैं, और हनुमान जी से सेवा लेनी थी, उबासी ली तो अब राम जी महाराज का मुंह खुला ही रह गया। ऐसा देखा तो सब डर गए, क्या हो गया क्या हो गया। कौशल्या जी आई, अरे बेटा क्या हो गया तेरू, क्या हो गया क्या हो गया, अब क्या हो गया, बोलना है नू, बोलना है, आंखें तो खुल लिया। सीता जी घबराई और भाई लोग सब घबराए, अब क्या करे, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इधर सीता जी ने हनुमान, हनुमान इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या बोलो माता जी, क्या, अरे तुम्हारे देखो महाराज की क्या हो गया, देखो जब जाओ। तो हनुमान जी महाराज आए, बनाए चुटकी बजाई, चुटकी रही, भगवान खुश हो गए एकदम, उनका वापिस ही ठीक हो गया। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए भगवान को कि महाराज हनुमान जी को सेवा में रखिएगा, क्योंकि आपकी हनुमान जी पर बहुत कृपा है, इस बात को हमने पहचान लिया। तो कहा इतनी कृपा क्यों है? तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे को आशीर्वाद दिया है सीता जी ने, क्या कराऊ बहुत रघुनायक छो, तुम्हारे पर राम जी अपार कृपा करेंगे, बहुत छो, छो माने कृपा, और करऊ कृपा प्रभु अस सुनी काना निर्भर प्रेम मगन मुस्काना। हनुमान जी महाराज ने कहा आशीर्वाद मिल गया मुझे कि तेरे पर भगवान कृपा करे, कृपा का आशीर्वाद मिल गया। हनुमान जी महाराज मस्त हो गए एकदम, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार प्रणाम किया कि माँ मैं कृतकृत्य हो गया। देखो हनुमान जी के लिए इतना आशीर्वाद, हनुमान जी की साधना हो गई यहाँ। दिखने में तो ऐसा लगता है कि सीता जी का बड़ा उपकार किया है, राम जी की सेवा की साधना इनको मिल गई। जो व्यक्ति भगवान का काम करता है उसकी स्वाभाविक उन्नति हो जाती है। देखो अब कृतकृत्य भयउ में माता, आपका आशीर्वाद मिल गया, कृतकृत्य हो गया, अब मुझे भूख लगी है माँ। हनुमान जी महाराज को कहो कि आज तक आपने कभी भूख के लिए कहा क्या, राम जी को कहा कि बंदरों को कहा या किसी को भी कहा क्या कि भूख लगी आई, कभी नहीं कहा। अरे मैनाक पर्वत ने तो समुद्र में से बीच में प्रकट होकर, अरे मेरे यहाँ बड़े उत्तम उत्तम फल है खा ले, तेरे बाप का मित्र हूँ और तेरे बाप का मेरे पर ऋण भी बहुत है, ये मेरे बड़े दिव्य फल है ना, राम जी के काज के बिना मैं फल नहीं खाऊंगा। और आज कहते मानू सुनऊ माँ तू मोही अतिशय भूखा, भूख मामूली नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतनी भूख क्यों लगी? लागी देखी सुंदर फल, रूखा बंदर हूं, सुंदर सुंदर फल देखे भूख लगी आई। अब ये भूख तो उनको और ही कुछ लगी है, लेकिन वो बोल रहे मुझे भूख लगी आई। तो बेटा भूख तो लगी आई, पर ये बंदर है, ये राक्षस है, ये बड़े बलवान राक्षस है, ये भूख क्यों लगी? देखो भूख इसलिए लगी कि हनुमान जी महाराज के मन में है, ये बगीचा मेरी माँ का है, ये अपनत्व की भूख लगी उनके, ये बगीचा सारा मेरी माँ का है, मेरी माँ यहाँ की मालकिन है, और जो है इसके फल के ऊपर मेरी माँ का अधिकार है, और माँ की चीज के ऊपर खाने पीने की चीज पर बेटे का अधिकार होता है, इसलिए ये अपनत्व की भूख जगी, अतिशय भूखा, ये अतिशय भूख लगी उनको। तो कहा कि देखो ये देखो बेटा, ये तो भगवान पर ये हनुमान जी महाराज देख लेते हैं कि भाई अपना ये बगीचा नहीं, जाने क्या कैसे कैसे फल होंगे, क्या होंगे, अपनों क्या लेना देना, नहीं हनुमान जी ने देखा ये तो मेरी माँ का है, तो मैं भूख लगी मैं तो भोजन करूंगा, ये बड़े बड़े पहलवान है इनका मुझे डर नहीं है, तो इनका यदि डर नहीं है तो जाओ मीठे फल खाना, ऐसे फल मीठे मत खाना। मीठे फल क्या कौन से होते हैं मैया? एक एक फल को चखूंगा क्या हुआ? मीठे फल वो होते हैं बेटा, तू इतना ही नहीं जानता, मीठे फल वो होते हैं जो जमीन पर गिरे हुए होते हैं, वो मीठे फल होते हैं, अपने आप टप नीचे गिर जाए, वो मीठे फल खाना है। ठीक है, हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और फल खाए से तरु तोरे लगा, और वृक्षों को तोड़ने लगे और फल खा लगे, वृक्ष को तोड़े तो नीचे गिरे तो खाए, वो तोड़ तोड़ करके खाने लगे। तो वहां लोगों ने मना किया, अरे ये क्या करते हो? तो कहो तुम कौन होते हो मना करने वाले? तुम होते कौन है? हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ इसके रक्षा में, महाराज आदिराज लंकाधिपति रावण ने हमको यहाँ नियुक्त कर रखा है, मारा बुरी तरह से, मेरी चीज को तुम खाते हो, मेरी माँ की चीज है ये। वो बेचारे मार खा करके रावण के पास में गए। अब रावण के पास जाकर वो जिस ढंग से रोए बिलखे, तो रावण उनको देख करके एक बार तो सोचा, अरे ऐसा कौन सा बंदर आया है, उठपटांग बातें करता है, अच्छा अच्छा जाओ कई और लोगों, अच्छा तुम जाओ, ये तो बेचारे कमजोर आदमी डर गए होंगे। वो कई लोग उन सबको मार दिया। वाल्मीकि रामायण में तो आता है कि कितने कितने लाख आए थे वहां, दस दस हजार के कितने कितने टुकड़ों में आए, एक एक वार में कितने मारा सबको। अच्छा इतनों को मार दिया, अरे अक्षय कुमार तुम जाओ। वो अक्षय कुमार था, अक्षय कुमार का क्षय हो गया, नाम तो अक्षय कुमार उसका हो गया अक्षय कुमार। आवत दे की विटप गई तरजा, ताही निपाती महाध्वनि गर्जा। वो आया तो उसको ऐसा मारा कि वो एकदम ही चित हो गया। इतना ही नहीं किया, हनुमान जी महाराज ने कुछ को तो मारा, और कुछ को क्या किया, मर्दे से पकड़ करके खाक में दबा के यूं रगड़ दिया उनको, और कछु मिली ऐसी धरी दूर, किन्हीं को पकड़ करके जमीन पर ऐसा रगड़ा, रगड़ते रगड़ते एकदम धूल में मिला दिया, हड्डी नहीं मिली उनकी। फिर जाकर के रावण से कहा कि महाराज इस ढंग से बंदर आया, बहुत ही बलवान है वो। अच्छा ऐसा बलवान है, अरे मेघनाथ जाओ मारना नहीं बेचारे को, है कोई बंदर आया होगा, देखें तो सही कौन है, कहां से आया, हमारे यहां तो हमारी आज्ञा के बिना कोई आ ही नहीं सकता है, लंकिनी के कहे बिना कोई आ ही नहीं सकता, ऐसा क्या हो गया यहाँ, कौन आया है? चलो चलो भाई तुम जाओ मेघनाथ। मेघनाथ ने अपने ही समान अनगिनत योद्धाओं को साथ में लिया, और जो है बड़ा क्रोध में डाकर के रुआ जाकर के हनुमान जी पर आक्रमण किया। हनुमान जी ने अति विशाल तरु एक उपारा, एक बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ करके उसके रथ के ऊपर प्रहार किया, और रथ तो वहीं पर पूरा हो गया, घोड़ा और सारथी सब पूरे हो गए, और फिर मेघनाद पैदल ही रहा। जब दोनों आपस में खूब, उसने भी अपने पेड़ उखाड़ लिया, दोनों ही खूब आपस में लड़ने लगे, मुठी का हमारे तरा चढ़ जाई, एक मुक्का मारा मेघनाथ के तो ताई एक चन मूर्छा आई, उसको तो मूर्छा आई। हनुमान जी मारा मुक्का मार के एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए। तब उसने कई प्रकार की माया की, वो माया उस हनुमान जी पर चली नहीं, उसकी माया। वो मेघनाथ देखता है कि मेरी माया देवताओं, ये माया नहीं चली मेरे पर, ये कौन है यहां? तो सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, उससे ऊंचा कोई अस्त्र नहीं होता। सब अस्त्र चला के देख ली, कोई अस्त्र लगे ही नहीं उस पर। वो बैठे हनुमान जी फल खा रहे, तो और सब अस्त्र तो है सब लगे नहीं। तब अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ब्रह्मास्त्र भी नहीं लगता, क्योंकि जिस समय हनुमान जी महाराज ने सूर्य को ग्रसा था ना, बाल समय रवि भक्ष लियो, तो सब देवताओं ने आकर उनको वरदान दिया। ठोडी पर तो ये इंद्र ने यहाँ पर वज्र लगा दिया। इंद्र ने कह दिया कि देखो अब बेटा, तुम्हारे कभी भी मेरा अस्त्र नहीं चलेगा। वायु तो खैर उसका पिता ही था, अग्नि वरुण आदि सब अस्त्रों ने कह, सबने कहा हमारा अस्त्र तुम्हारे पर नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मेरा अस्त्र है ना, वो तुम्हारे पर चलेगा नहीं, और यदि कोई चलाएगा भी तो दूसरा अस्त्र चलने पर मेरा अस्त्र फैल हो जाएगा तुम्हारे। अच्छी बात, तो ब्रह्मास्त्र के बाद कोई भी अस्त्र नहीं चलाना चाहिए था। तो राम इसने मेघनाद ने रावण पुत्र ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र सांधा। तो हनुमान जी ने देखा कि मेरे पर ब्रह्मास्त्र लग तो नहीं सकता है, परंतु यदि आज ब्रह्मास्त्र की मैं रक्षा न करूं तो ये मेरे कई असलियत को पहचान लेंगे, और ये बांध करके कितना क्या करते हैं ये फिर हमको देखना है। तो वो ब्रह्मास्त्र यूं लगाया तो हनुमान जी महाराज बंद गए, बंद रहे। ब्रह्मास्त्र तेई साधा कपि मन कीन विचार, जोन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। और वो ब्रह्मास्त्र से लिपटे तो वो पेड़ से नीचे गिरे, तो नीचे गिरे देखा कि इतने इतने राक्षस यहां खड़े, तो हनुमान जी महाराज राक्षसों के ऊपर ही गिर गए, तो कितने राक्षस वहां पर पूरे हो गए। परती उपार कटक संगारा, तो जो है उसने नागपात से और बांधा कि क्या पता ये हनुमान को वापिस हमारे बुद्ध। ब्रह्मास्त्र से बांध दिया और फिर नागपात और लगाया। अब नागपात चलाने की जरूरत नहीं थी, चलो नागपात ही सही। पार्वती से बोलते हैं कि देखो पार्वती, जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, अरे जिसके नाम के जपने से भवबंधन कट जाता है, मनुष्यों का अज्ञान कट जाता है, उस भगवान के दूत को बांधने के लिए देखो क्या क्या कर रहे हैं। प्रभु कारज लगी, भगवान के काम के लिए उस बंदर ने अपना बंधन भी उचित समझा, ठीक है बांध दिया साहब, नागपात से भी बांध दिया, बंध गए। अब जब हनुमान जी बंद गए तो सब के सब लोग दौड़े दौड़े आए, अब चलो अब बात, अब चलो अब बात। दौड़े दौड़े सब लोग आए कि सभा में चले होंगे, देखो उस बंदर को सभा में देखेंगे, सभा में देखेंगे। ऐसे देखने के बहाने से सब लोग जो है रावण की सभा में आकर इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के हनुमान जी महाराज ने रावण को देखा ही, कोई रावण को अभिवादन किया हो और कुछ नहीं। हनुमान जी को आश्चर्य होता है कि अरे जिस समय हमारे ठोडी लगी, ठोडी पर वज्र का प्रहार हुआ था, जो देवता आए थे इंद्रादि देवता, वो तो रावण के यहां हाथ जोड़े जोड़े खड़े। कर जोरे सुर दिश पविनीता, भृकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण को यूं टेढ़े टेढ़े देखता है और वो सब हाथ जोड़े खड़े हैं, अरे देवता हो ये क्या दिन आया आप लोगों के। लेकिन हनुमान जी महाराज यूं आंख निकाले अकड़ाई से पूरे खड़े हैं। कपि प्रतापन कपि मन संग, देखी प्रतापन कपि मन संका, जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका। सर्पों के बीच में गरुड़ जी जैसे रहते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज निडर होकर के खड़े रहे। निडर होके खड़े रहे तो फिर रावण ने कहा, बहुत भले बुरे कहा, और क्यों उसको बार बार ये मन में बात आ रही थी कि मेरे बेटे को मारने वाला है, इस बात को लेकर तो शोक हो रहा है और हर्ष हो रहा है, देखो कैसा वीर बलवान मेरा बेटा है कि इसको बांध के ले आया। मैंने कहा मारना नहीं, बांध के लाना थी, बांध के लाया है। ए बंदर, कहां के हो तुम, किस देश से आए हो, कैसे मेरी लंका के अंदर आकर के और निशंक होकर के मेरी तरफ देख रहे हो, तुमको पता नहीं है ये कौन है, ये कौन देश है, और तुमको क्या हमारे विषय में ही पता नहीं है, हमारे यहां बगीचे में कैसे घुस गए, कैसे तुमने निरपराध निशाचरों को मारा। हनुमान जी ने कहा मेरा परिचय दे, वो तुम्हें जानने के लिए आतुर हूं, तो फिर सुनिए मेरा परिचय। जिनकी माया से अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है, जिनकी माया से ब्रह्मा जी संसार बनाते हैं और विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान जिसको हरा करते हैं, और जाबल शीश धर, और जिनके बल के कारण से शेषनाग ब्रह्मांड को अपने सिर के ऊपर रजकण के समान धारण करते हैं, एक मिट्टी का कण होता है उसको कोई न क्या वजन होता है उसको वो धारण करते हैं, और जिन्होंने तुम्हारे जैसे महान दुष्ट आत्माओं को शिक्षा देने के लिए इस समय में श्री विग्रह धारण कर रखा है, शायद अभी भी तुम नहीं समझे होंगे तो और समझा दूं, जिन्होंने जनक जी की सभा के अंदर सब पराक्रमी योद्धाओं के बीच में संग शिव जी का धनुष तोड़ा है, अभी भी नहीं समझे, जिन्होंने खर दूषण त्रिश्रा और बाली को परम धाम भेजा है, अभी भी नहीं समझे, जाके बल लवले सते जीते हु चरा चर झारे, अरे जिनके थोड़े से बल के कारण से तुम ये चराचर प्राणियों को जीते हुए यहां लंका पर बैठे हुए अभिमान करते हो और जिनकी प्राण प्रिया सीता का तुमने हरण किया है, उनका मैं दूत हूं। तुम कहते हो मेरा प्रभाव नहीं जानते, जानता हूं, सहस्त्रबाहु से आप ही तो लड़ने वाले थे ना, जिन्होंने आपको कैद खाने में डाल दिया था और फिर पुलस्त्य ने आकर के तुमको छुड़ाया था, बाली के पास आप भी युद्ध करने के लिए गए थे और बाली ने आपको कांख में रखा था, ऐसे निर्लज्जता की हंसी हंसने लगा रावण। अरे जा, बीत गए सो बीत गए, आज देखो ना मैं क्या हूं, मेरे फल क्यों खाए, भूख लगी इसलिए खाया, क्यों, बंदर का स्वभाव होता है, बंदर का स्वभाव होता है वो रूखे फल को तोड़ता, रूखे तुम्हारे पेड़, रूखे कैसे फल लगे हुए, ना ना ना, ये रूखे फल है, जहां भगवान का प्रेम नहीं भक्ति नहीं वो प्राणी रूखा होता है, तुम तो पेड़ पौधे की बात करते हो, सबको अपना शरीर प्यारा लगता है। देखो मैं तुम्हारे बंधने में आने वाला नहीं था, इन कुमार्ग पर चलने वाले तुम्हारे सैनिकों ने मुझे मारने का अपराध किया है, इसलिए मैंने इनको मारा है, क्योंकि अपराधियों की लंका हो गई, तुमको अपने कुल पर विचार करना चाहिए, तुम्हारा कुल पीछे से कितना पवित्र है, और तुम उनसे बैर रखते हो जिनसे काल भी डरा करता है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देने के लिए आया हूं, मेरा कहना मानो कि भगवान प्रणतपाल है, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, भगवान के चरणों में प्रेम करो, देखो भगवान के सन्मुख हो जाओ और फिर यदि विपत्ति आती है तो आने दो, और भगवान से विमुख यदि रह गए और संपत्ति आई तो वो तो आई नहीं आई बराबर है, सबसे बड़ी संपत्ति तो भगवान की भक्ति होती है। रावण, हमको बड़ा आश्चर्य होता है, लोगों की एक बुद्धि होती है वो भी बात समझे, तेरे 10 सिरों में 10 बुद्धि बैठी है तभी तेरे अकल नहीं आ रही है, राम के समान इस संसार में कोई तेरे को दूसरा आश्रय देने वाला नहीं है। अपने अंदर शूल पैदा करने वाले मोह का त्याग करो रावण, और भगवान का भजन करो। अच्छा, रावण को ज्ञान देने वाला गुरु मिला आज, तेरी मृत्यु बड़ी निकट आ रही है। अरे ना 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 रावण, मृत्यु तो तुम्हारा उल्टा हो ही क्या, ये उल्टी बात है। मृत्यु तुम्हारे और हमारे बीच में तो है, लेकिन मृत्यु को मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देख रहा हूं। वो तुम्हारी मृत्यु शायद मेरी तरफ भूल से दिखाई देती है, जैसे एक कांच होता है उससे नजदीक की चीज बहुत दूर दिखती है। ये माइक है ना, यूं देखेंगे ये बहुत दूर दिखेगा ये माइक, ऐसे शायद तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया होगा। अरे इतनी बड़ी बात सभा में कहने का आज तक किसी ने साहस नहीं किया। मार दो इसको, हम आज्ञा देते मारो। जो ही मारने की आज्ञा दी, महाराज की जय हो, विभीषण जी आए, मंत्रियों के साथ आए। महाराज हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इसने अपने आप को राम का दूत कहा है, दूत को कभी भी मृत्यु का दंड नहीं दिया जाता, और कोई उपाय कीजिए। हाँ हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा, बोलो भाई क्या करना चाहिए। सबने कहा नहीं, विभीषण की बात सही है, कि अच्छी बात है। रावण कई देर तक देख कर कह रही हूं, अभिमान में हंसने लगा। अच्छा ऐसा करो, इस बंदर का अंग भंग कर दो। तो वो बंदर जितनी बुद्धि थी, वो बंदर उसके पूंछ के ऊपर जलने वाले शाण वगैरह वो कसने लगे, और फिर जो है वहां खूब अच्छे प्रकार से तेल वगैरह, लंका के अंदर जितने कपड़े और जितने तेल के कड़ा वगैरह रहे होंगे, बड़े बड़े कड़ा, पीपे तो कैसे कहें, कड़ा ही होते थे वहां, तो तेल बोरी पट बांध पूनी सब कुछ लगा करके और जो है उसके आग लगा दी। तो कहा कि अरे भाई सहाय शारद में, जानी भगवान ने जो है कितनी सहायता की, शारदा ने सहायता की। ये वही शारदा है जिसने राम जी को वनवास में भेजने के लिए मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा है, वही सरस्वती आकर के आज यहां निशाचरों के मन में ये बात पैदा कर रही, इसके पूंछ को जड़ाओ। अब जो है सब राक्षसों ने रावण के वचन सुने और वे सब के सब ये करने लगे। तो राहन नगर बसन घृत तेला, घी और तेल कुछ भी नहीं रहा और आग जलने लगा। आग जलने लगी तो हनुमान जी महाराज ने एक काम किया, परम लघु रूप, छोटा सा रूप बनाए और वो जितने भी जलनशील पदार्थ थे वो जलने लगा, और साथ में जो है ये साथ में ये 49 पवन मिल गए। 49 पवन मिलकर के सब जो है वो सब घर जलने लगे। अब कोई हनुमान जी ने पूछ के, हनुमान जी क्यों पूछ लेंगे, हनुमान जी के अपने तो कुछ करो न कराओ, सब भगवान की कृपा से होगा। हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गरजार कपि बड़ी लागे आकाश। हनुमान जी तो समुद्र में कूद गए, सारी लंका धू धू करके जलने लगी, एक विभीषण का घर नहीं जला, और उलट पुलटी लंका सब जारी। हनुमान जी ने इतना तो काम किया कि भाई उलट पुलट करके सब लंका को जलाया। उलट पुलट करके क्यों जलाया, कि मुर्दे को जलाया जाता है तो उलट पुलट करके जलाया जाता है, तो वहां वो लंकिनी मारी ना, वो लंकिनी भी तो लंका है, उसको उलट पुलट करके जला के राख कर दिया। मन में विचार आया, अरे सीता जी का क्या हुआ, अरे लंका में तो सीता जी भी रहते होंगे। तब जो है वो सीता जी के पास गए, फिर सीता जी ने चूड़ा मणि दी, चूड़ा मणि माने बोरिया, और कहा कि राम जी से कहना कि उन्होंने इंद्र के पुत्र को क्षमा नहीं किया, उसको भी दंड दिया था, आज वो क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। कि ठीक, प्रणाम करके हनुमान जी महाराज वहां से विदा हो गए। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय
राम सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय
राम सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की आनंद कंद भगवान की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्मा
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय
भक्त वत्सल भगवान की
जय
पवन सुत हनुमान की
जय
राम।